गया नहीं हूं, मैं दूर में रहता हूं, तो उनकी चरण धूलि नहीं मिलती। निकट रहने के योग्य नहीं, हताश उद्धव हो गए। आया समझ में? बिना निकट रहने से चरण धूलि नहीं मिलेगी, और हमारे अंदर में जो उसके प्रतियोगी गुण दुर्गुण हैं, वो हमारे अंदर में व्यभिचार दुष्टा में प्रेम संपत्ति का कोई भी अनुकूल भाव नहीं, इसलिए मेरे लिए चरण धूलि संभव नहीं। अच्छा, तो जब वो वहाँ थे और गोपियाँ मूर्छित हो जाती हूँ और उस समय वो चरण की धूलि लेकर के लगा लें तो नहीं होगा? क्यों उससे नहीं होगा? चरण धूलि किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं ये किसी को धक्का दे करके गिरा करके जबरदस्ती लपट झपट कर दे दिया चरण की धूलि, जैसा हम लोग कर लेते हैं। इतनी सहज होती तो उद्धव जी वहां पर गोपियां प्रेम से मूर्छित हो गई और उनकी चरण धूलि ले ली। भाई इतना सहज नहीं, चिन्मय धूलि है ना। अतः पूर्वोक्त बैल गोपी संग लुब्ध, गोपियों के संग के लिए लुब्ध मैंने लोग है उद्धव को, किंतु पाए नहीं। ऐसे नारद जी और क्रूर जी और वहां के सब लोग हैं, ये सब लोग हैं, इसी को समझना चाहिए वो शब्द से व्यभिचार दुष्टा। और इमां माने ऐसी जो गोपियां, इन्हीं का महात्मा है, परम विस्मय के सहित में क्वा क्वा दो दो बार वो कह उठे। परमात्मा श्री कृष्ण में ऐसा रूढ़ भाव जिनको स्वयं आविर्भूत हुआ है, साधन के द्वारा मत समझो इन गोपियों को, और उनकी कृपा से दूसरों में उत्पन्न हो सकते हैं, ये बात तो ठीक है, किंतु उनमें जो हुआ अनादि है, अनादि रादि
गोविंद,
वो गोपी गोपी गोविंद नहीं है प्रेम के विषय में। जैसे कृष्ण अनादि और अनादि है ना, और समस्त के कारणों के कारण, सबके कारण और स्वयं अनादि है, वो प्रेम भी गोपियों में अनादि है और सब में
आदि,
सबका आदि भी है और उनमें स्वयं है। वो यदि कृपा कर दी किस पर, कृपा की दृष्टि कोर कर दिया, बस वो निहाल हो जाएगा, उनकी कृपा से ही ऐसा प्रेम मिलेगा। इसलिए दृश्यमान इस रूढ़ भाव को, अर्थात उद्धव जी देख रहे हैं कि कैसा वो रूढ़ भाव है, शास्त्र के दृष्टि से समझा किंतु हृदय में आया कि नहीं, उनके हृदय में नहीं आया। लक्षणों से जो ऊपर के लक्षण है उनसे देखा जाए ये रूढ़ भाव है, किंतु जैसे कि कोई एक व्यक्ति है फूट फूट करके रो रहा है या रो रही है, हमने देखा मन तो खराब हो गया, किंतु वैसा फूट फूट करके रो सकते हैं? जब वो भाव यदि आएगा तब तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो, यही उनकी दशा है। कहिए लेश आभास भी, लेश का आभास भी नहीं है, आभास में कुछ भी नहीं है, विश्व में कहीं नहीं दिखाई पड़ता, हमारे ही तो बात है क्या, कहीं नहीं। च शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया यहां, रूढ़ माने होता है वहां पर स्वयं आविर्भूत, किसी हेतु से साधन इत्यादि के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो रूढ़ नहीं। गोपियों में स्वभावतः ये प्रेम है नित्य। यहां पर जो परम आत्मनि जो कहा, आत्मनि पर आत्मी मैंने चित्त लिया, एक परमात्मनि मैंने परमात्मा के प्रति, और परम आत्मनि आत्म एक एक शब्द का अर्थ ये बतला रहे हैं। आत्मी मैंने यहां पर चित्त, जिनका चित्त परम रूप से आविष्ट हो गया है किस में, कृष्ण में, प्रेम से आविष्ट हो गया है, जिनका चित्त जैसे पहले बतलाए ना मनमना भव मद भक्त या मदगत चित्त इत्यादि तो मया
मत कामा
ऐसा जो हो जिसका मन कृष्ण के रंग में रंग चुका है, ऐसा आत्मनि परम आत्मनि चित्त का अधिरूढ़ आविष्ट होना ही कृष्ण के प्रति प्रेम है। अत्यंत परम अविष्ट चित्त जिनका कृष्ण में हो जाए यही रूढ़ भाव है। अतः यह दे परमाविष्ट चित्त स्वयं आविर्भूत जो रूढ़ भाव जो प्रेम है वही वहां पर उत्पन्न हो जाता है अविष्ट होने के कारण ही। यदि कोई अविष्ट, हम लोग अभी अविष्टनिक भी नहीं, अविष्ट का कोई छाया भी नहीं, लेस भी नहीं, अच्छा भी लगता है थोड़ा सा बस दिया है, और फिर अच्छा लगने पर जब तौलते हैं तो देखते हैं कि विषय का आसक्ति, विषय की आसक्ति हमारी नीचे हो जाती है और कृष्ण के प्रति प्रेम हल्का होकर के ऊपर उठ जाता है। इसलिए गोपियां परम आत्मनि अपने आत्मा में अर्थात उनकी आत्मा में यह प्रेम स्वयं आविर्भूत हो जाता है, क्योंकि आविष्ट होते हो जाती हैं। अब कहते हैं ननुस्वरे ईश्वरो अनुभजते अनुभजतो अभिदूषो अपि सच्चा। यदि कोई तत्व नहीं जानने वाला है अर्थात औषधि का गुण न जाने और औषधि यदि वो सेवन करे कोई तो उसे लाभ हो जाएगा, अमृत न जानकर भी कोई पान करे तो वो अमर बन ही जाएगा, जैसे तैसे भी। उसी के लिए यहां कह रहे हैं कि यह भाव जो रूढ़ भाव है न जानकर के भी भगवान के प्रति लागू भी यदि कोई कर दे, आविष्ट हो जाए भगवान के कथाओं में लीलाओं इत्यादि में, तो उसका परम कल्याण। और इन गोपियों की बात ही क्या, मूढ़ व्यक्ति भी यदि उनका अनुभजतो माने क्या, अनुमाने निरंतर भजन करता अथवा थोड़ा सा भी आभास भी इस रूढ़ भाव का यदि भगवान के प्रति यदि हो जाए ना, तो भी एकदम जगत को मंगल करने वाला और अपने भी स्वयं मंगल कराने वाला, थोड़ा सा भी अर्थात यहां पर आभास हुआ, अपराध युक्त होकर के भी यदि कोई करे, सकाम होकर के भी यदि भगवान के प्रति यदि करता है तो भी ये जरूर हो जाएगा ऐसा होगा। इसलिए अनुभजतो थोड़ा भी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसमें बल मिलता है इस हरि कथा से। अच्छा भाई नहीं, अणु के लिए तो आशा कर ही सकते हैं, छाया के लिए आभास के लिए तो कर ही सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी भारी संतना है। उद्धव जी को यही संतना मिली अनुभजतो अपि, वो कह रहे हैं थोड़ा भी यदि वैसा भजन करे, भजन माने अभ्यास भी करे अर्थात उनकी महिमा न जान करके भी, भक्ति की महिमा न जाने, नाम की महिमा अजामिल नहीं जानता था और अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, तो नहीं जानने से क्या उसको लाभ नहीं हुआ, मुक्त तो वो हो ही गया, मुक्त होकर के भगवत पदवी को प्राप्त कर गया। ऐसे ही ऐसा प्रेम न जानबूझ करके, और ऐसे ये कैसे होगा भाई, ये उसी को बतला रहे हैं। इसलिए इनकी महात्मा न जान करके, महिमा न जान करके भी मूढ़ता बसता भी अथवा मैं जो मूढ़ हूं, उद्धव जी कह रहे हैं हमें कृष्ण प्रेम नहीं है वैसा गोपियों जैसा, इसलिए मैं मूढ़ हूं केवल भगवत भक्ति के बल से या भगवान के करुणा के महिमा के बल से ही ऐसा संभव हो सकता है, उनके भगवान की जो नित्य जन है। यहां पर ननु शब्द का अर्थ है वितर्क से, यहां पर कह रहे हैं अनुमाने क्या होगा, अनुमाने आभास हुआ माने थोड़ा सा भी, अर्थात यदि कोई इसकी ये सब कथाओं को यदि सुना थोड़ी सी श्रद्धा से साथ में, महिमा नहीं जाना तभी यदि ये सुन लिया तो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक न एक दिन उसको उसमें लगा देगा। अतः ईश्वर क्यों, नियंता तो ईश्वर है ना सबके, ईश्वर माने होता है नियंता, भगवान करा दे। अच्छा अनु माने होता है अनुगत्यमयी, यहां पर अनुगत्यमयी का विशेष अर्थ है। यदि गोपियों की कथा हो और उनको किसी वैष्णव के साथ में यदि हमने सुना, गोपियों की कृपा न भाई कोई बात नहीं, वो जो रागात्मिक जो भक्त हैं रूप सनातन जैसे या और लोग हैं भक्त विनोद ठाकुर गुरुपाल गुरु जो, इन लोग की भी यदि कृपा हो जाए ना और इनसे भक्ति जैसे सुनेंगे ना तो भी हो जाएगा। ये लोग भी फलदान में समर्थ है ननु मैंने निश्चित रूप में, इसलिए अल्पमात्र में भजनशील भी व्यक्ति यदि हो, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं अनु ईशत आश्रय मात्र, आश्रय यदि कर लिया, अनु मैंने थोड़ा भी आश्रय कर लिया, कुर्वतो अपि साक्षात अव्यवधानेन श्रेय परमहित हितम करोति। ये तो अनुमात्र से सेवन करने, आज यदि कोई खूब श्रद्धा पूर्वक कर दिया तो निश्चित रूप में तब तो कोई संदेह की बात नहीं है, यदि अनुमात्र में भी यदि किया जाए तो वो जरूर कृपा करते हैं। क्यों, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण है अन्यथा
कर्तुम
अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ, सब कुछ कर सकते हैं, जो असंभव है संभव है और जो असंभव संभव दोनों नहीं है वो सबको वो कृष्ण संभव करा सकते,
अघटन घटन पति शक्ति,
अघटन घटन पति शक्ति संपन्न भगवान। इसलिए ईशत मात्रा में विभाजन करने पर भी उनके संबंध से साक्षात प्रदान किया करते हैं, प्रेम प्रदान कर देते हैं। जिस प्रकार से औषधि है, औषधि का हम महत्व नहीं जानते हैं, यदि सेवन किया जाए, किंतु एक नीम हकीम जानते हो, नीम हकीम
नहीं, अच्छे नहीं जानता है,
नीम हकीम माने क्या होता है,
पढ़ा देखा है तो माने,
नीम हकीम उसको कहते हैं
हकीम
है, कभी हकीमी पढ़ी नहीं, डॉक्टरी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, अपने आप भुई फोड़ होकर, भुई फोड़ माने अपने आप सब जान लिया, और वो दवा देता है तो रोग रोगी दोनों मरेंगे, रोग भी अब कभी नहीं होगा, क्यों
रोगी
रोगी नहीं रहा मर गया, तो इसको कहते हैं नीम हकीम। तो कहते हैं कि नीम हकीम के द्वारा दी गई है औषधि का जो कोई सेवन किया तो वो मरेगा, ऐसा मत करो। यदि ऑथराइज डॉक्टर हो, वैद्य हो, प्रमाणिक हो, तो वो नाड़ी नब्ज देख करके विचार करके जो औषधि दे देंगे, भले ही हम उसकी महिमा नहीं जानते हैं किंतु वो तो जानते हैं ना, तो वो जानने वाले के द्वारा दी गई ही औषधि हम उसके संबंध में नहीं जानने पर भी उसका सेवन करते हैं और रोग दूर हो जाता है। ऐसे ये भक्ति कहां से मिली, रसिक जनों के द्वारा मिली, भक्तों के द्वारा मिली, गुरु कृष्ण
प्रसाद पाए भक्ति लता बीज,
तो उनके द्वारा मिली, वो किंतु ठीक रहना चाहिए, वो ठीक नहीं रहा और जहां तहां सड़क पर भी बाजारों में से भक्ति मिल गई ले लिया, तो वो तो प्राणहानि हो जाएगी। मैं बतलाया ना उत्पात ही रे व केवल एकांत की हरि भक्ति उत्पात ही रे, इसलिए एकांत की भक्ति की जरूरत नहीं है, वैष्णव के अनुगत में जरूरत है, नहीं तो अपने ही बना लिया दवा और खा लिया ना। सांप का विष एक दवा होती है ना,
होम्योपैथी के हिसाब से,
तो भाई तो सांप का विष ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो विष, और उसको लेकर के किसी को दे दो तो ठीक हो जाएगा, मर जाएगा। उसको शोधन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब वो होता है। उसी प्रकार से भक्ति जो कही गई है, जो इसको करने वाले, जो भजन करने वाले पारायण हैं, उनके मुख से सुन करके जो भक्ति मिलती है, उसका श्रवण करने से भी हो जाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। कर्तुम अकर्तुम फिर वैसे ही बन करके आए, और कुछ ऐसे ही गंदी चीज से देते, फिर उस दिन भी वो घृणा आ गई और उन्होंने किया नहीं, फिर इंद्र किया आपने। बार बार तुम आराधना करता है और मैं देता हूँ तो तू आता है, अब बिना घृणा के उस इसी समय में जब किसी रूप में जब दूंगा तो आपने, फिर इसके बाद जान करके अनजान में भी यदि अमृत पी ले या औषधि सेवन करे तो उसके रोग दूर हो जाते हैं, और जो जानपुर करते हैं श्रद्धा के साथ में ऐसी भक्ति करेगा कृष्ण के प्रति, वो लोक विगीत होने पर भी भगवान के प्रति उपपति इत्यादि का भाव रखेगा तो भी कोई हर्ज नहीं, वो भगवान को ही पाएगा। हमारे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी के प्रश्न करने पर यही बतलाया, अरे ये तो मैंने उक्त पुरस्ता, मैंने तो पहले कह दिया, यदि क्रोध से भगवान मिल सकते हैं, काम से मिल सकते हैं, स्नेह से मिल सकते हैं, द्वेष से मिल सकते हैं, जो द्वेष आचरण करने वाले, शत्रुता का भाव करने वाले भी उनको पा सकते हैं, तो कोई प्रेम के साथ में न जानते हुए भी उनके प्रति स्नेह कर दे तो उससे क्यों नहीं उसको पा जाएंगे। यदि गोपियों को साधारण भी मान लो और उन्हें कृष्ण के प्रति परम प्रति पति का भाव या प्रेम का भाव रखा तो क्यों नहीं मिल जाएगा उनको, भगवान मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं साधारण रूप में यदि न जानते हुए भी महिमा यदि कोई कर ले, और गोपियां कैसी थी, निखिल शास्त्र वेत्ता, उनके प्रणम्ब और वंदनीय, नारद ऋषि जैसे बाल्य ब्रह्मचारी युक्त और मुक्त महापुरुष, उद्धव जैसे भगवान के परिकर, इन सबके वंदनीय है ये गोपियां, और सब कुछ जानने वाली कृष्ण को तर्क और बाग विलास में उनको परास्त कर देने वाली गोपियां, और कृष्ण के तत्व को इतना सुंदर रूप में जानने वाला कोई विश्व ब्रह्मांड में नहीं है, कोई भी नहीं है, और फिर वो कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम करती हैं, तो उनकी कभी पतन और ये सब संभावना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं भक्ति एक ऐसी चीज है, विशेष करके उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, कोई भी व्यक्ति महादुराचारी हो, अत्यंत नीच श्रेणी में जन्मा हो, अत्यंत अपदार्थ हो, लोक के द्वारा निंदनीय हो, समस्त उसमें दुर्गुण हो, किंतु इस भक्ति का किसी कारण से भक्तों के द्वारा भक्ति का आश्रय करने पर वो भक्ति इसको विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लेकर के पहुंचा देती है और उसके समस्त दुर्गुणों को दूर कर देती है। भक्ति एक ऐसी पवित्र चीज है, उसमें भी ब्रज की गोपियों का भाव ये तो क्षण मात्र में कल हमने बतलाया था, ऐसे गोपियों के संग से न जाने कितने लोग हजारों सत सहस्त्र सब लोग भगवान के प्रति वैसे ही भाव को पाया, जार भाव को पाया है, प्रेम भाव को पाया, तो इसमें कहा नहीं क्या। फिर कहते हैं देखो लोक दृष्टि से गोपियों का यह व्यभिचार है, लोक दृष्टि, लोक दृष्टि माने क्या,
सामाजिक
नहीं जानते हैं, सामाजिक दृष्टि से जिन्होंने शरीर को अपना माना है जब मैं हूं, और सांसारिक झूठ को और सांसारिक सत्य बस इसी में वो कन्फाइंड रहते हैं, उसी में वो लगे रहते हैं और कुछ नहीं समझते। मैं पूछा जैसे तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा जी मेरा नाम मुकुंद है, या मेरा नाम सतपाल है, मेरा नाम कुछ है, सतपाल ही कहा। ये सतपाल नाम झूठ है कि सच है? न तो सतपाल के गुण हैं और न तो उसका यथार्थी आत्मा का, ये झूठ है। अरे तुम सच सच बतलाओ तुम्हारा नाम क्या है, तो वही कहेगा जी मेरा नाम तो सतपाल है, किंतु उसका यह नाम झूठ है, सच नहीं है। ये आरोप है ने? जब ये शरीर ही नहीं है तो तब फिर ये नाम भी सत्य नहीं। वह आम नाम आत्मा का है ना शरीर का या मन का, इसलिए वो झूठा। कृष्ण का यह नाम जो है ये क्या है, कृष्ण माने आकर्षण भी यदि ले लिया है और न माने आनंददायक भी हो तो भी देखो उसमें सब। इस तरह से भक्तों का कि कोई भी भक्त है, इंदुलेखा नाम एक ले, इंदुलेखा माने क्या है, राधा जी की एक सहेली है इंदुलेखा। चंद्रमा जैसे सुंदर है ऐसे देखने में वो इंदु, ये झूठ है कि सच है, ये सच है। उस चंद्रमा से नजर कितनी गोटी वो सुंदरी। इसलिए आत्मा का जो नाम है वो स्वाभाविक और नित्य नाम है, और उसकी क्रियाएं ये सब नित्य हैं और सत्य हैं। शरीर से संबंधित प्रत्येक चीज ही असत्य है, जितना कि भाई कोई सच बोले किंतु वो सब झूठा है। यह है लोक समाज, लोक का सच भी झूठ है और झूठ भी झूठ है। ये लोगों को साधारण लोगों को बुझा नहीं सकते। आज के राजनीतिक कर्मवीर इंजीनियर डॉक्टर किसी को भी नहीं समझा सकते, वो समझेंगे नहीं, समझ करके भी नहीं समझेंगे। आत्मा नाम की कोई चीज उनकी दृष्टि में है ही नहीं, भगवान नाम की कोई दृष्टि नहीं है। हाँ बहुत कुछ ऐसे हो सौभाग्यमान जो थोड़ा सौड़ा विश्वास करते, नहीं तो उनकी दृष्टि नहीं। इसलिए लोक दृष्टि में गोपियां वनचरी और व्यभिचार दुष्टा दोनों है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का वनचरी वो कहते हैं ठीक है, वन में विचरण करने वाली है, कोई आचार विचार नहीं है, लोग ऐसा देखते हैं। कोई कह रहा था जैसे यहाँ वो कोई है बॉम्बे की लड़की, सुंदरी है बड़ सब ठीक है, किंतु पैखाना जाएगी और फैखाना का पहने हुए कपड़े आकर के हाथ पैर धो लिया और रसोई घर में चलिए ठाकुर जी की पूजा कर ली, अपना वंदना स्तव कर लिया, वहां पर इसको बुरा समझते नहीं लोक दृष्टि से। ये वनचरी मैंने कोई आचार विचार नहीं, यही कहेंगे। अच्छा मैं पूछता हूं, एक आदमी मांस मछली अंडे प्याज लहसुन खाता है नहीं? और वो तीन बार स्नान करके मंदिर में जाता है, और एक है वो मांस मछली अंडे गोश्त नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, किंतु पैखाने जाने के समय में वो जो कपड़ा पहनता है वो पीछे भी इसको धारण करता है, दोनों में पवित्र कौन है, कौन पवित्र है? महात्मा जी बतलाइए तो, जो स्नान करता है वो पवित्र है,
जो
ना महाराज जी करें जो स्नान तीन बार करता है वो पवित्र, भले ही वो मांस मछली खाए।
नहीं, जो मांस मछली नहीं खाता है वही पवित्र है,
स्नान नहीं करने पर भी। स्नान तो करना चाहिए भाई,
नहीं उनका तो सौदा सा रहा है, हिंसा नहीं आया, हिंसा आया शुद्ध बोलते हैं।
हाँ भाई इस चीज को समझो, यदि वो 10 बार जीवन में कभी स्नान नहीं किया कभी भगवान का नाम ले लेता है, मांस मछली अंडे प्याज लहसुन और गंदी चीजें नहीं खाता है और भगवान का स्मरण करता है, तो क्षण क्षण स्नान कर वो परम पवित्र। और जिन लोगों के हृदय में कपटता धूर्तताई वैष्णव निंदा इत्यादि है, मांस मछली खाते हैं, वो 10 बार दिन में भी स्नान करे, मैं समझता हूं वो पवित्र नहीं है, वो पवित्र लोक दृष्टि से किंतु वो पवित्र है। कौन? जो जोग बीज करे और स्नान करके ठाकुर जी के घर में जाए और लोग इसी का आदर करें, किंतु हम लोग व्यक्तिगत रूप में हम लोग उसको कपड़ा जा हो गया था तो क्या हो गया पैखाने में होकर क्या, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मतलब नहीं ये सर, किंतु हाँ जब विचार करेंगे तो वो पवित्र हो सकता है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कोई महाभागवत हो उत्तम भागवत और वो स्नान नहीं कर रहा और वही कपड़े पहन करके पैखाना भी जाता है, आता है हाथ पैर धो लेता है, उसका विचार ये है लाल कपड़ा कभी अपवित्र होता नहीं गेरुआ और वैष्णव के कपड़े अपवित्र नहीं, ये ठीक है कि गलत है? और दूसरों के लिए, दूसरे के लिए अधिकार नहीं है समझने का इतना, किंतु सबके लिए। उसी तरह से हो सकता है कि लोक समाज की जो बातें हों आपातः देखने के लिए पवित्र या अपवित्र उनकी दृष्टि से हो, किंतु संत लोग जो भक्त हैं उस चीजों को स्वीकार नहीं करते लोक समाज की बातों। तो ये वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गोपियां लोक दृष्टि से वनचरी हो सकती हैं, लोग आ सकते हैं, अब व्यभिचार दुष्टा भी अपने घर को पति को छोड़ दिया है, अपने समाज लज्जा हाया बेहाया सबको छोड़ दिया है, ऐसा लोग सब समझ सकते हैं। लेकिन इतना होने पर भी नारद और सुखदेव व्यास सबके द्वारा वंदनीय है, यहां तक कि कृष्ण की वंदनीय है तो और लोगों की तो बात, प्रत्येक गोपियां कृष्ण उनकी वंदना करके लोगों में ऐसा प्रचार कर कृष्ण के लिए सर्वस्व उनका छोड़ा। यहां पर कहते हैं कि 3 तरह के विचार होंगे व्यभिचारी, स्त्रियों के लिए कह रहे हैं जो स्त्रियां इस लोक में अपने पति की सेवा भी करती हैं और दूसरे एक उपपति की भी सेवा करती हैं उनसे भी मिलती हैं, ये पक्का नंबर व्यभिचारी है, ये लोक में परलोक में सर्वत्र ही दंडनीय और अपवित्र है, व्यभिचारी है। कुछ स्त्रियां ऐसी हो सकती हैं जो उसका विवाह तो हुआ उसके पति तो हैं किंतु बचपन से ही एक किसी जुआ लड़के के प्रति उसका मन लग गया और विवाहित होने पर भी घर वालों ने जोर जबरदस्ती शादी तो करा दी किंतु उसकी श्रद्धा बनी हुई है उस व्यक्ति के प्रति जिसको बचपन से ही वो जानती है और उसके अतिरिक्त अपने पति के प्रति भी कुछ भाव नहीं है और न संग है, उसी व्यक्ति को अपना मानती है। जैसे चंडीदास की पत्नी थी, बचपन से ही चंडीदास नामक विप्र से उसका मन लग गया, उसका जोर से विवाह दूसरी जगह करा दिया गया, चंडीदास ने विवाह नहीं किया उसके लिए, वो थे ब्राह्मण और वो थी रजकनी, रजकनी मैंने
धोबी,
बड़ी भक्त थी, उसने अपना सर्वस्व इनके लिए दे दिया और इन्होंने भी उच्च जाति होते हुए भी उसको ग्रहण कर लिया, किंतु लोक समाज में ऐसा हुआ जैसे ये पतित ब्राह्मण है और उसको समाज से बाहर कर दिया ना, तो उसका विवाह होने पर भी उसने अपने पति के पास वो गई नहीं और उसे कोई संबंध न रख करके मरेंगी बचेंगी हम चंडीदास के साथ ही रहेंगी, यह लोक के द्वारा निंदनीय होने पर भी उन्नत समाज में बुद्धिमानों की दृष्टि में, साहित्यिकों की दृष्टि से यह अनुचित नहीं, किंतु समाज के दृष्टि से अनुचित है। जो विशेष साहित्यिक रसिक होंगे उनके लिए ये दो हुआ समाज और संसार। तीसरा एक ऐसा है जो अपना विवाह होने पर भी अपने पति से कोई भी संबंध न रख करके भगवान को ही अपना प्रियतम सर्वस्व जाना, एक ऐसा है। तो लोक दृष्टि से भले ही ये विगित हो किंतु ये समस्त विश्व के बंदनीय है। आया समझ में? कौन? जिन्होंने कृष्ण को ही अपना पति प्रेमिक सर्वस्व एकदम मान लिया, उन्होंने समझा कि यही हमारे परम पति है, यही हमारे सब कुछ है, जीवन के आधार है। यह यदि मूर्ख लोग हैं, मूढ़, उनकी दृष्टि में भले ही विगित माने निंदनीय हो, वो व्यक्ति ही निंदनीय है। यथार्थ में ये विश्व को पवित्र करने वाली और समस्त शास्त्रों की वंदनीय और संतों की वंदनीय ही है, जो कि संसार में अपना सब कुछ रहने पर पति को भी छोड़ करके जैसे गोपियां, इसलिए गोपियों को यहां पर सबसे वंदनीय कहा। यहां तक कि लक्ष्मी जी भी लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके कृष्ण के प्रति अनुरक्त हुई, सब शास्त्र के लोग उनकी वंदना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की निंदा करें, उस महिला की, स्त्री की, तो वो नरक जाएंगे, वही निंदनीय है। कल हमने इस श्लोक की और व्याख्या की थी, अब आगे हम चलते हैं। नायं श्रियो अंग नितांत रते प्रसाद, यह श्लोक पहले हम लोग पढ़ चुके, इसकी व्याख्या कर चुके। यदि सुनने की इच्छा होगी फिर से तब फिर कल लिखी। इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, पहले दिया है, पहले शायद पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में दिया है, उसको हम देखेंगे ना, तो फिर एक बार पढ़ेंगे। आज इसके बाद वाला चलते हैं। आशा बहो चरण रिजुषाम हम श्याम वृंदावने किमत गुल लताओ सभी ना या दुष्टजन स्वजन आर्य पथन चहित भेजे मुकुंद पदमें सुखी। अभी जो कहा हमने पे माइस्ट्री हो उसी के लगातार में ये कहा, पहले वाला कहा था उद्धव जी ने पे माइस्त्री हो एता पर संहितम वो और नायन सियों, ये तीन उद्धव जी ने कहा।
छोटा श्लोक जो उद्धव है
और यहाँ आशाम हो चरण रेणु दुशान उद्धव जी का है, उद्धव जी का है। आशाम हो चरण रेणु दुशाम हम श्याम वृंदावने किमप लताओ सभी ना जातु सजन स्वजन आत्मपथन चहित्वा भेजे मुकुंद पदवे। वही यहाँ पर बतला है पति को इन्होंने छोड़ दिया, पति क्या आज धर्म लोक धर्म सब कुछ छोड़ दिया और उद्धव इनकी चरण की रेणु की वंदना करते हैं। इन सब श्लोकों में गोपियों को सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की प्रिया प्रमाणित कर और जब जगत में सबके वंदनीय प्रमाणित करके अब किस लिए गोपियां इतनी उन्नत हैं ये बतला रहे हैं और उनकी चरण की धूलि की कामना कर रहे हैं। साधारण इसका अर्थ ये हुआ अहो गोपियों की चरण रेणु की धूली को जुषाम हम सेवन करने के लिए वृंदावन में कहीं भी गुल्म लता औषधि या घास हो जाऊं और उनकी चरणों की धूली का सेवन मैं कर सकूं। यहां पर जो चरण रेणु एक वचन ही का, रेणु का वचन बहुवचन क्या होगा? फलम फले फलानी रेणव रेणव होता है। यहाँ पर भी वही कहा चरण रेणु भजाम है दूसरा माम। एक भी गोपियों के दुष्त्वजन, गोपियों ने दुष्त्वजन जिनको त्याजा त्याग नहीं किया जा सकता, स्वजन माने भाई बंधु परिवार और सब। आर्यपथ, आर्यपथ को भी छोड़ दिया मैंने, वैवाहिक संबंध भी प्रत्याग कर दिया, पति को छोड़ देना एक बार ना? और पति को छोड़ करके दूसरा पति चुन लेना ये गड़बड़। मान ली कि किसी कारण से रामचंद्र जी ने सीता जी का प्रत्याग कर दिया ना? किंतु सीता जी ने क्या किया, न तो रामचंद्र जी का प्रत्याग किया न दूसरे पति को धारण किया। और रामचंद्र कैसे, ऊपर से तो बाह्यतः उनको प्रत्याग किया किंतु भीतर से प्रत्याग किया कभी नहीं किया। इसका क्या प्रमाण,
सौ से प्रमाण, सीता रख कर ही यज्ञ किया था।
लौकुश गए रामचंद्र जी के दरबार में रामायण का गान करने और रामायण आरंभ की, लोगों की इतनी उत्कंठा हुई सुनने में रामचरित्र, ये राम और लोगों की तो बात क्या, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों मुग्ध हो गए, विशेष करके राम, मानो ऐसे मालूम होता था आज ही ये घटनाएं घटी। लौकुश गाने के बाद में रामायण एक कितने 5 सर्ग ना 15 सर्ग तक प्रतिदिन वो करते थे सभा, तो उतना सर्ग जब गा लिया तो कहा जी आज इतना ही तक रहेगा अब अगले दिन करेगा। तो रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी से कहा जी पूछाओ जी इनका परिचय क्या है, इसके माता पिता का नाम पूछाओ, और एक बात करना माता पिता का नाम पूछ करके परिचय और सोने के थाल में ये भरी हुई असरफियां उसको दे देना बच्चे को, बच्चे की झोली में, दोनों झोली दिए हुए थे। तो लक्ष्मण जी बड़े प्रेम के साथ में पुचकार करके उनको, बहुत सुंदर तुम लोग तो गाते हो, अब जरा रामचंद्र जी के तरफ में और लौकुश तरफ में ऐसे और ऐसे देख रहे हैं, वो तो नीचे थे ना लौकुश और रामचंद्र जी सिंहासन में बैठे, मतलब क्या, अरे ये दोनों देखने में लगते हैं, यदि उम्र हो जाती बड़ी तो ये दोनों देखने में एक ही जैसे, राम भी जैसे ये दोनों लगते हैं, क्यों ऐसे लगते हैं, छोटाई और बड़ाई का ही, बड़ा का ही केवल भेद है, किंतु रूप रंग नाक मुख कान बनावट सब कुछ कैसी है, उस विचार का मिले। और बोले जैसे बेटे बेटो या ब्रह्मचारी जी आपके पिताजी का नाम क्या है और मैया का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, वो कुछ नहीं बोल, बताओ तो सही हमारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे मैया का नाम कहाँ के, तो वो कहाँ रहते हैं, तो 2-3 बार बोल लिए तो बड़ा लव कहता है ब्रह्मचारियों का के पिता और माता का नाम नहीं पूछना चाहिए, ब्रह्मचारी लोगों को के गुरु का नाम पूछ सकते, ये तो शास्त्र विरुद्ध पूछ रहे हैं। और यदि कोई पूछने पर कोई ब्रह्मचारी बतला दे ये मेरी माता का नाम ये है और पिता का ये नाम है, वो अशास्त्री हुई उसको उसी क्षण कान पकड़ करके आश्रम से बाहर कर देना चाहिए, पूर्व इतिहास भूल नहीं सकता। और यदि कोई ये कहता है कि अब मैं कुछ दिन सीख पढ़ करके फिर वहां पर चला जाऊंगा घर में, तो उस ब्रह्मचारी को वो सब जनेऊ ठनेऊ सब माला टाला निकाल कर देना और रख लेना चाहिए, जाओ पहले घर में ही जाओ, ये अशास्त्रीय बात है, समझ रहे हो ना, घर की जो चिंता करेगा ब्रह्मचारी होकर के तो फिर वो उप कुर्बान ब्रह्मचारी होकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, उप कुर्वार ब्रह्मचारी, वो फिर घर में जाकर के विवाह शादी करके भजन करते, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है। और वो माता पिता का नाम न बतला करके सब समय गुरु का नाम बतलाया। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, जिसे मैं समझता था जी आप तो राजकुमार हैं, लक्ष्मण जी हैं, आप जो जानते होंगे, किंतु आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। बस लक्ष्मण जी चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं। लक्ष्मण जी पहली बार यहाँ पर आए जीवन में, बिना उत्तर दिए हुए रहे। फिर उन्होंने कहा तब अपना परिचय तुम ही दो, तो मैं वाल्मीकि जी का छात्र हूँ, वो मेरे गुरु हैं, उन्हीं की पाठशाला में उन्हीं के आश्रम में रह करके ये सब पढ़ता हूँ और वही हमारे सर्वस्व। मैया का नाम अब पूछने का साहस नहीं हुआ, नहीं पूछा। इसके बाद में पुलिस से तुम लोग छात्र हो, हमारे महाराज धीराज रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं सुन करके, आप लोगों को पुरस्कार स्वरूप में ये अस्थियाँ पे कर रहे हैं थाल समेत। हम लोग ब्रह्मचारी हैं, गुरु के आश्रम में केले के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं और पेड़ हैं सब, गैया है, बस हमारे की बहुत बहुत यथेष्ट। हम लोग किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं लेते हैं, बस यही इसी से हमारा जीवन निर्वाह होता है, हमको कभी भी रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें से हम एक तिनका भी नहीं ले सकते। कपड़ा गुरु जी के आश्रम में वो बलकल छाल मिल जाता है, हम लोग पहन लेते हैं, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं। बहुत लोग दिए किंतु कुछ नहीं, रामचंद्र जी के पास में अंत में वो लोग लौट गए आश्रम में। मैया ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और मुख चुंबन करके अपने अंचल से उनके मुख पूछे, बेटा कहाँ गया था, बहुत देर हो गई, बहुत देर के बाद में लौटा, आज हम लोग कोई एक अयोध्या का नरेश आए हैं, उनकी राजसभा में हमारे गुरु जी ने आदेश दिया कि वहां जाकर के आज पाठ करो, हम लोग वहीं पर चले गए थे, आज वहीं पर कुछ देर हो गई। मैया एक बात बतलाओ तो बस, उनका थोड़ी आंखों में लेकर के बोलने, मैया एक बात हमने देखा। क्या देखा? उस राजा के पास में बाएं की तरफ में एक सोने की मूर्ति बैठाई गई थी, वो देखने में ठीक अभी कल हूबहू वही तुम्हारे समान दिख रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, तुम्हारी मूर्ति वहां पर किस लिए लगा दी? वो तुम्हारी मूर्ति थी रानी, किसकी मूर्ति थी मुझे पता नहीं। बस सीता जी जहां सुनी ना, बस एकदम रोने लगी आंख में, अरे ये तू रो क्यों रही है, क्या बात हो गई तू रो रही। सीता जी समझ रही है रामचंद्र जी ने किसी के कारण से हमें ऊपर से तो छोड़ दिया,
राजा ने रानी को छोड़ा,
राजा ने रानी को छोड़ा, किंतु रामचंद्र जी ने सीता जी को नहीं छोड़ा, ये मुझे पूर्ण विश्वास। इसलिए प्रतिवर्ष यज्ञ होते थे, सीता जी की मूर्तियां लगती थी और किसी का नहीं, और किसी का नहीं दिया। जब वशिष्ठ जी से पूछा रामचंद्र जी मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, उन्हें कहे तुम नहीं कर सकते, तो क्यों? तुम अनक्वालिफाइड हो, तुम इसके लिए अधिकारी नहीं, तो क्यों? तो तुमने स्त्री को छोड़ दिया, वो भी बिना किसी अपराध के ही छोड़ दिया, इसलिए तुम नहीं कर सकते, और यदि मैं करना चाहता हूं तो उसको बुला लाइए, तो ये तो हो नहीं सकता मैं उसे बुला लाऊं, तो फिर कैसे होगा? तुम नहीं कर सकते, फिर भी मुझे करना है, बतलाइए कोई उपाय, आप सब समर्थ हैं। तो उन्होंने कहा जब ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरी शादी कर लो, तो ये तुम मरते समय भी मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता जो दूसरी स्त्री के साथ कर, फिर ये कैसे होगा? तो फिर ऐसा करो, जो सीता जी की प्रतिमा बनाओ और उसके साथ में बैठ करके, हाँ ये मैं कर सकता, किंतु दूसरे वर्ष उसको नहीं रखूंगा, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर सीता जी की मूर्ति रखकर सीता जी को ये पता लगा, तो सीता जी को कितना आनंद हुआ होगा इस विरह में भी दुख में भी, ये हमको ऊपर से छोड़ने पर भी मन के द्वारा हमको नहीं छोड़ा, दिन रात हमारा स्मरण किया करते हैं, कितना आनंद हुआ।
हर साल नया नया क्यों बनाते
हैं? बनाते हैं वो कोई कारण है भीतर में। अब तुम विचार करो, तो इस तरह से इनका अब सीता जी को उन्होंने छोड़ दिया, किंतु सीता जी ने तो उनको छोड़ा नहीं, न अपने मन से छोड़ा, न किसी से दूसरे से विवाह किया, न मन के द्वारा ही दूसरों का। ये जगत में ऐसी स्त्रियां वंदनीय है जगत। गोपियों ने मन के द्वारा भी किसी पति को ग्रहण किया, और कृष्ण ने जोगमाया ने उनके पतिव्रत धर्म रखने के लिए एनी हाउ जिस तरह से भी कृष्ण से ही उनकी शादी करा दी, भले ही कोई दूसरे लोग नहीं समझे, किंतु शादी हुई कृष्ण के साथ में। और वो जो प्रतिमूर्तियां थी, उनके जो पति थे, वो कृष्ण के ही एक तरह से प्रकाश थे, वो दूसरे कोई नहीं थे। ऐसा मालूम होता था कि दूसरे गोपाल हैं, किंतु कृष्ण ही के प्रकाश थे। और उन पतियों के साथ में उन गोपियों का कोई भी संबंध नहीं, उनकी प्रतिमूर्ति बना करके जोग माया ने उनके साथ में रख दिया, और ये गोपियां सब समय कृष्ण से मिल रही हैं, और सब लीलाओं का निर्वाह हो रहा है। इसलिए गोपियां सब जगत की वंदनीय है। यदि संसार में भी कोई पति रहते हुए भी यदि कृष्ण को पति मान करके या कृष्ण को ही परम प्रियतम मान करके कोई भजन करता है, तो ये जगत के वंदनीय है। इनको कभी भी दुराचार इत्यादि का भाव नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात, कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम भजे, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम। मैं सवेरे कह रहा था कुछ इसके संबंध में, ये जिस प्रकार से वहां पर लिखा है, और साधारण लोग समझते हैं कि सर्व धर्मों को प्रत्याग करके स्वरूपतः या आसक्ति प्रत्याग करके यदि किया जाए कर्म,